एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते, पर सच कहूं तो अक्सर हम उसे उतनी अहमियत नहीं देते।
हाँ बिल्कुल, नींद रोज की जरूरत है, पर कितना जानते हैं हम इसके बारे में।
सही कहा। तो आज हम इसी नींद की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और इसके लिए हम स्टीवन डब्ल्यू लॉकली और रसल जी फूस्टर जैसे वैज्ञानिकों के काम को आधार बनाएंगे, खासकर उनकी किताबों के जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे।
और ये आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत जरूरी भी हो गया है।
हाँ, क्योंकि ये जो हमारी 24/7 वाली भागदौड़ है, देर रात तक स्क्रीन चलती रहती है और एक सोच बन गई है कि कम सोएंगे तो मतलब ज्यादा मेहनती कहलाएंगे।
बिल्कुल। तो इन सब के बीच ये समझना कि नींद क्या है, क्यों जरूरी है, शायद पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है।
तो चलिए आज की बातचीत में यही समझने की कोशिश करते हैं कि नींद सिर्फ सुस्ती उतारना क्यों नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग के लिए कितनी कितनी मौलिक चीज है।
बिल्कुल। और इस समझ के पीछे जो दो बड़े नाम हैं, स्टीवन लॉकली और रसल फॉस्टर, पहले जरा उनकी बात कर लें।
हाँ जरूर। स्टीवन लॉकली ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में है। नींद और हमारी जो बॉडी क्लॉक है जिसे जैविक घड़ी कहते हैं उसके विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों तक सबके साथ काम किया है ये समझने के लिए कि हमारी ये अंदरूनी घड़ी कैसे काम करती है।
और रोशनी का क्या रोल है इसमें?
हाँ बिल्कुल। और दूसरे हैं रसल फॉस्टर।
हाँ, फॉस्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सर्केडियन न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर हैं, मतलब हमारी जो 24 घंटे वाली लय है शरीर की, उसके एक्सपर्ट।
अच्छा।
और उनकी ये खोज तो कह सकते हैं क्रांतिकारी थी। उन्होंने हमारी आंखों में एक तीसरी ही तरह की प्रकाश संवेदनशील कोशिका का पता लगाया, IPRGCs।
अरे हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। ये देखती नहीं है?
नहीं, ये देखने के काम नहीं आती, ये सीधे हमारे दिमाग की जो मास्टर घड़ी है ना, उसको सिग्नल भेजती हैं कि बाहर रोशनी है या अंधेरा, दिन है कि रात।
बाप रे, मतलब इसने तो पूरी कहानी बदल दी होगी कि रोशनी कैसे हमारी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करती है।
बिल्कुल। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का जो ज्ञान है वो हमें नींद के विज्ञान की एक बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल समझ देता है।
तो अगर इन किताबों का या इनके काम का निचोड़ निकालें तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है?
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि नींद कोई पैसिव स्टेट नहीं है। ऐसा नहीं कि शरीर बस बंद हो गया और टाइम पास हो रहा है। नहीं, ये एक बहुत ही सक्रिय, बहुत जटिल और बेहद जरूरी जैविक प्रक्रिया है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी मानसिक क्षमता, भावनात्मक स्थिरता, यहाँ तक कि हमारे जिंदा रहने के लिए भी ये मौलिक है।
सही कहा। और ये किताबें उस आम धारणा को भी तोड़ती हैं कि भाई नींद को थोड़ा कम कर लो, काम ज्यादा कर लो या मजे कर लो।
हाँ, ये उसे चैलेंज करती हैं। ये कहती हैं कि स्वास्थ्य के तीन स्तंभ हैं, आहार, व्यायाम और नींद। तीनों बराबर के जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि एक को कम करके दूसरे से काम चला लेंगे।
अच्छा।
और ये आज की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती हैं, वह है नींद की कमी की महामारी जो आधुनिक समाज में फैल रही है।
और ये क्यों हो रहा है? टेक्नोलॉजी।
हाँ, टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है। हमारी जैविक जरूरतों की अनदेखी है, देर रात तक काम करने का कल्चर है, ये सब मिलकर हमारी नींद छीन रहे हैं और हम इसके खतरों को समझ नहीं रहे या नजरअंदाज कर रहे हैं।
तो ये किताबें हमें एक तरह से जगाने का काम कर रही हैं।
बिल्कुल, सचमुच जगाने का। तो ये बताती हैं कि नींद असल में है क्या, हम क्यों अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा इसमें बिताते हैं, और अगर इसे नजरअंदाज करते हैं तो उसके क्या नतीजे होते हैं।
तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि नींद है क्या चीज, मतलब हम सब सोते हैं पर वैज्ञानिक इसे कैसे देखते हैं, कैसे नापते हैं?
हाँ, व्यवहार के स्तर पर तो हम जानते हैं, सोते वक्त हरकत कम हो जाती है, शरीर एक खास पोजीशन में होता है, बाहर क्या हो रहा है उस पर ध्यान कम देते हैं पर जगाने पर जाग जाते हैं।
ठीक है।
लेकिन वैज्ञानिक इसे और बारीकी से देखते हैं। वो दिमाग की बिजली की तरंगें नापते हैं जिसे EEG कहते हैं, आंखों की हरकत देखते हैं EOG, और मांसपेशियों में कितना तनाव है वो EMG से पता चलता है।
अच्छा, तो ये सब माप कर क्या पता चलता है?
इससे पता चलता है कि नींद कोई एक समान अवस्था नहीं है, इसके अंदर भी अलग अलग चरण या पड़ाव होते हैं। मोटे तौर पर दो तरह की नींद होती है, एक NMRE यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद, जिसमें आंखें तेजी से नहीं घूमती, और दूसरी REM यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद, जिसमें आंखें तेजी से घूमती हैं।
ओके, NREM और REM। तो NREM में क्या होता है?
NREM के भी फिर कई चरण हैं। स्टेज N1 जो बिल्कुल हल्की नींद है, फिर N2 थोड़ी गहरी नींद जहां यादें सहेजी जाने लगती है, और फिर आती है स्टेज N3।
N3 ये क्या है?
ये सबसे गहरी नींद है। इसे स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि दिमाग की तरंगें बहुत धीमी और बड़ी हो जाती हैं, और यहीं पर कह सकते हैं असली मरम्मत का काम होता है, शारीरिक मरम्मत, ग्रोथ हार्मोन का निकलना।
और आपने दिमाग की सफाई की बात की थी।
हाँ बिल्कुल, इसी N3 नींद में दिमाग का एक खास सिस्टम जिसे ग्लिम्फैटिक सिस्टम कहते हैं वो सक्रिय होता है। ये दिन भर में दिमाग में जमा हुए जहरीले प्रोटीन जैसे अल्जाइमर से जुड़ा एमिलॉइड बीटा, उसको बाहर निकालने का काम करता है, एक तरह से दिमाग की धुलाई।
अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सोते समय हमारा दिमाग खुद को साफ कर रहा होता है।
एग्जैक्टली। और फिर NREM के बाद आती है REM नींद।
हाँ, REM, रैपिड आई मूवमेंट, इसमें क्या खास है?
ये बड़ी विरोधाभासी नींद है, पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं इसे, क्योंकि इस दौरान दिमाग की गतिविधि लगभग वैसी ही होती है जैसी जागते हुए होती है।
अच्छा।
हाँ, आंखें पुतलियों के नीचे तेजी से घूमती हैं, और सबसे बड़ी बात, हम सपने इसी नींद में देखते हैं।
ओके, तो सपने REM नींद में आते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर दिमाग इतना एक्टिव है तो हम सपनों पर एक्ट क्यों नहीं करते? मतलब अगर सपने में उड़ रहे हैं तो उड़ने क्यों नहीं लगते?
अच्छा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि REM नींद के दौरान हमारी मांसपेशियां, गर्दन के नीचे की लगभग सारी मांसपेशियां पूरी तरह से ढीली पड़ जाती हैं। इसे मसल्स एटोनिया कहते हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है ताकि हम अपने सपनों को जीने ना लगें।
शुक्र है, वरना तो गड़बड़ हो जाती।
बिल्कुल, और हम रात भर में इन NREM और REM के चक्करों से कई बार गुजरते हैं। एक चक्र लगभग 90 मिनट का होता है। N1 से N2, फिर N3, वापस N2 और फिर REM, और ये साइकिल चलता रहता है।
और हर साइकिल एक जैसा होता है?
नहीं, थोड़ा फर्क होता है। रात के पहले हिस्से में गहरी NREM नींद N3 ज्यादा होती है, और जैसे जैसे सुबह करीब आती है REM नींद का समय बढ़ता जाता है।
ये जानना कितना दिलचस्प है कि नींद इतनी मुनज्जम, इतनी स्ट्रक्चर्ड चीज है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, नींद तो पूरे एनिमल किंगडम में पाई जाती है, और उसके बड़े अनोखे रूप देखने को मिलते हैं।
जैसे?
जैसे डॉल्फिन है या कुछ समुद्री पक्षी, वो आधे दिमाग से सो सकते हैं, एक हिस्सा सोता है दूसरा जागा रहता है।
क्या बात कर रहे हैं, आधे दिमाग से? क्यों?
ताकि वो तैरते या उड़ते रह सकें, और सांस लेते रह सकें, या शिकारियों से बच सकें। इसे यूनिहेमिस्फेरिक स्लीप कहते हैं।
कमाल है। और?
और ये भी देखिए कि कौन कितना सोता है। शेर जैसे शिकारी जिन्हें खतरा कम है वो ज्यादा सोते हैं, जबकि हिरण या जेब्रा जैसे जानवर जो शिकार बन सकते हैं वो बहुत कम सोते हैं और टुकड़ों में सोते हैं ताकि ज्यादातर वक्त चौकन्ने रह सकें। यहाँ तक कि फल मक्खी जैसे छोटे कीड़े भी सोते हैं।
इसका मतलब तो साफ है, नींद जरूर कोई बहुत ही बुनियादी, बहुत जरूरी काम करती होगी।
बिल्कुल, वरना विकास के क्रम में प्रकृति ने इतने जोखिम भरे व्यवहार को जिसमें जानवर इतना असहाय हो जाता है बनाए क्यों रखा होता? उसे तो खत्म हो जाना चाहिए था।
तो फिर सवाल वही आता है, हम सोते क्यों हैं? क्या फायदे हैं नींद के? एक तो आपने बताया मरम्मत और दिमाग की सफाई।
हाँ, वो शारीरिक और दिमागी बहाली, रेस्टोरेशन, एक बड़ा कारण है। दूसरा है ऊर्जा का संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन।
ऊर्जा बचाना
कैसे? सोते समय हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, शरीर का तापमान थोड़ा गिर जाता है, इससे ऊर्जा बचती है। शायद ये तब ज्यादा जरूरी था जब रात में भोजन खोजना मुश्किल या खतरनाक होता था।
अच्छा, और कोई कारण?
तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है याददाश्त और सीखना, मेमोरी कंसोलिडेशन और लर्निंग।
याददाश्त? नींद का याददाश्त से क्या लेना देना?
बहुत गहरा लेना देना है। नींद के दौरान दिमाग दिन भर सीखी गई चीजों को प्रोसेस करता है, जरूरी जानकारी को पक्का करता है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है, और जो गैर जरूरी जानकारी है उसे हटाता भी है।
मतलब कुछ नया सीखा है तो उसे याद रखने के लिए अच्छी नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना उसे पढ़ना या प्रैक्टिस करना।
बिल्कुल, माना जाता है कि NREM नींद तथ्यात्मक यादों, डिक्लेरेटिव मेमोरीज के लिए जरूरी है, और REM नींद प्रोसीजरल मेमोरी जैसे कोई स्किल सीखना और भावनात्मक यादों के लिए ज्यादा अहम है।
वाह, ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की जानकारी है। और नींद का एक और पहलू है सपने।
ये
क्यों आते हैं, इसका क्या काम है?
सपने ज्यादातर REM नींद में आते हैं। इस दौरान दिमाग का जो भावनात्मक केंद्र है एमिग्डाला, वो बहुत सक्रिय होता है। लेकिन जो सोचने समझने वाला तर्क करने वाला हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो थोड़ा शांत रहता है।
अच्छा, तभी सपने इतने अजीब और इमोशनल होते हैं, लॉजिक कम होता है उनमें।
हाँ, शायद इसीलिए। अब सपने आते क्यों हैं, इसके कई सिद्धांत हैं, कोई एक पक्का जवाब नहीं है।
कुछ सिद्धांत क्या है?
एक है थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी, कि हम सपनों में खतरनाक स्थितियों का सामना करने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि असल जिंदगी में तैयार रहें।
दिलचस्प।
दूसरा है भावनात्मक संतुलन, इमोशनल रेगुलेशन, कि सपने दिन भर के भावनात्मक अनुभवों को, खासकर तनावपूर्ण यादों को, प्रोसेस करने और उनके असर को कम करने में मदद करते हैं।
अच्छा।
और एक विचार ये भी है कि सपने रचनात्मक समस्या समाधान, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करते हैं। दिमाग अलग अलग विचारों को नए तरीके से जोड़ता है।
तो नींद की दुनिया तो सच में रहस्यों और जरूरी कामों से भरी पड़ी है। अब जरा उस सिस्टम पर आते हैं जो ये सब कंट्रोल करता है कि हमें कब नींद आती है, कब हम जागते हैं। आपने टू प्रोसेस मॉडल का जिक्र किया था।
हाँ बिल्कुल, हमारी नींद और जागने के चक्र को मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं नियंत्रित करती हैं। इसे कहते हैं टू प्रोसेस मॉडल ऑफ स्लीप रेगुलेशन।
ओके, तो पहली प्रक्रिया क्या है?
पहली है प्रोसेस एस। प्रोसेस एस यानी होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव। सीधे शब्दों में कहें तो ये नींद का दबाव है।
नींद का दबाव?
हाँ, आप जितनी ज्यादा देर तक जागते रहते हैं ये दबाव उतना ही बढ़ता जाता है, आपको उतनी ज्यादा नींद महसूस होने लगती है।
और ये दबाव बनता कैसे है?
इसका मुख्य कारण है एक केमिकल जिसका नाम है एडेनोसिन। ये हमारे जागते रहने के दौरान दिमाग में धीरे धीरे जमा होता जाता है। जितना ज्यादा एडेनोसिन उतना ज्यादा नींद का दबाव।
अच्छा।
और जब हम सो जाते हैं तब
ये एडेनोसिन धीरे धीरे दिमाग से साफ हो जाता है और नींद का दबाव कम हो जाता है। सुबह उठकर हम ताजा महसूस करते हैं क्योंकि एडेनोसिन का लेवल कम होता है।
तो ये जो कॉफी हम पीते हैं,
हाँ,
कैफीन क्या करती है?
वो इसी एडेनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। मतलब एडेनोसिन है तो दिमाग में, पर वो अपना असर नहीं दिखा पाता और हमें नींद महसूस नहीं होती।
अच्छा, ये है कॉफी का राज। तो ये हुई प्रोसेस एस। दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी है प्रोसेस सी यानी सर्कैडियन पेसमेकर। यह हमारी अंदरूनी लगभग 24 घंटे की जैविक घड़ी है,
हमारी बॉडी क्लॉक।
एग्जैक्टली। यह हमारे दिमाग के एक बहुत छोटे से हिस्से में स्थित होती है जिसे सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस या SCN कहते हैं। ये घड़ी तय करती है कि दिन के किस समय हम ज्यादा अलर्ट महसूस करेंगे और किस समय हमें नींद आएगी, भले ही हमें जागे हुए कितनी भी देर क्यों ना हो।
मतलब ये सिर्फ नींद ही नहीं और भी चीजें कंट्रोल करती होगी।
हाँ बिल्कुल। ये हमारे हार्मोन के निकलने का समय तय करती है, जैसे रात में मेलाटोनिन जो नींद लाता है और सुबह कॉर्टिसोल जो हमें जगाता है। ये हमारे शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, इन सब में जो 24 घंटे का उतार चढ़ाव होता है उसे भी नियंत्रित करती है।
और ये घड़ी बाहरी दुनिया से कैसे तालमेल बिठाती है? मतलब इसे कैसे पता चलता है कि बाहर दिन है या रात?
इसका सबसे बड़ा सिग्नल है रोशनी, खासकर नीली रोशनी।
नीली रोशनी?
हाँ, हमारी आंखों में जो वो खास कोशिकाएं हैं IPRGs जिनका जिक्र हमने किया था, वो रोशनी को, खासकर सुबह की रोशनी को, डिटेक्ट करके सीधा SCN को सिग्नल भेजती हैं। इससे हमारी अंदरूनी घड़ी बाहरी दुनिया के 24 घंटे के साइकिल से सिंक हो जाती है, जिसे एंट्रेनमेंट कहते हैं।
तो मतलब सुबह की धूप हमारी घड़ी को सेट करने के लिए जरूरी है।
बहुत जरूरी है। और इसी तरह रात में तेज रोशनी, खासकर स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, हमारी घड़ी को कंफ्यूज कर सकती है। वो दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है और मेलाटोनिन का निकलना रोक देती है, जिससे नींद आने में मुश्किल होती है।
तो सबसे अच्छी नींद कब आती है इन दोनों प्रोसेस के हिसाब से?
सबसे ज्यादा नींद तब आती है जब नींद का दबाव, प्रोसेसेस, अपने चरम पर हो। मतलब आप काफी देर से जागे हों और आपकी जैविक घड़ी प्रोसेस सी भी सोने का संकेत दे रही हो, यानी रात का समय हो।
इन दोनों का तालमेल कितना जरूरी है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण शायद किशोरों यानी टीनेजर्स की नींद में देखने को मिलता है ना?
बिल्कुल सही कहा। किशोरावस्था में एक बहुत दिलचस्प बदलाव आता है। उनकी ये जो जैविक घड़ी प्रोसेस सी है वो कुदरती तौर पर थोड़ी पीछे खिसक जाती है। इसे फेज डिले कहते हैं।
फेज डिले मतलब?
मतलब ये कि उनके शरीर में नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन, वो वयस्कों के मुकाबले देर से निकलना शुरू होता है, इसलिए उन्हें रात में 10 या 11 बजे से पहले नींद आना मुश्किल होता है। और इसी वजह से सुबह उनकी घड़ी भी देर से बजती है, मतलब उन्हें सुबह देर तक सोने का मन करता है।
लेकिन हमारे स्कूल तो सुबह जल्दी शुरू हो जाते हैं, 7 या 8 बजे।
यहीं पर समस्या आती है। समाज की मांग, जल्दी स्कूल और उनकी बायोलॉजी, देर से सोने जागने की प्रवृत्ति में टकराव होता है। नतीजा ये होता है कि ज्यादातर किशोर पुरानी नींद की कमी के शिकार हो जाते हैं।
और हम सोचते हैं कि वो आलसी हैं, सुबह उठना नहीं चाहते,
जबकि ये उनकी बायोलॉजी है। और इस नींद की कमी का असर उनकी पढ़ाई, उनके मूड, उनकी मानसिक सेहत, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा जैसे ड्राइविंग करते समय पर भी पड़ता है।
ये तो बहुत गंभीर बात है, और जब ये पूरा नींद का सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो कई तरह की बीमारियां भी होती होंगी।
हाँ बिल्कुल, नींद संबंधी विकार स्लीप डिसऑर्डर्स काफी आम है, जैसे अनिद्रा, इंसोम्निया यानी नींद ना आना या नींद बनाए रखने में मुश्किल, स्लीप एपनिया, इसमें सोते समय बार बार सांस रुक जाती है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, नार्कोलेप्सी, इसमें दिन के समय अचानक नींद के दौरे पड़ते हैं, सर्काडियन रिदम डिसऑर्डर, जैसे जेट लैग या शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को होने वाली दिक्कतें।
और आखिर में किताबें इस बात पर भी जोर देती हैं कि कैसे हमारा आधुनिक समाज, हमारी 24/7 वाली दुनिया हमारी नींद की दुश्मन बन गई है।
हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। बिजली की खोज ने हमें रात में भी दिन की तरह जीने की सुविधा दे दी, और अब स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, इनकी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी रात में भी हमारे दिमाग को जगाए रखती है, ये मेलाटोनिन को दबा देती है, हमारी नींद को पीछे धकेल देती है।
तो हम लगातार अपनी बायोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं।
बिल्कुल, और इसके नतीजे दिख भी रहे हैं। कई बड़ी दुर्घटनाओं जैसे चेर्नोबिल या एक्सॉन वाल्डेज तेल रिसाव में थकान या नींद की कमी को एक बड़ा कारण माना गया है। और लंबे समय तक नींद की कमी को मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, कमजोर इम्यूनिटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी जोड़ा गया है। तो ये जो कम सोना मतलब ज्यादा काम वाला बैज ऑफ ऑनर है ना, ये असल में सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश या टेकअवेज निकालें तो वो क्या होंगे? मेरे लिए पहला और सबसे जरूरी संदेश तो यही है कि नींद को गंभीरता से लेना शुरू करना होगा।
हाँ,
ये सिर्फ आराम का समय नहीं है, ये शरीर और दिमाग के लिए एक बहुत ही सक्रिय और जरूरी निवेश है। वो जो दिमाग की सफाई वाली बात आपने बताई, ग्लिम्फैटिक सिस्टम, वो तो आंखें खोलने वाली थी। भारत में जहां देर रात तक पढ़ना या काम करना बहुत आम है, ये समझना बहुत जरूरी है कि नींद काटकर हम असल में अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
बिल्कुल सही। दूसरा संदेश मेरे ख्याल से ये है कि हमारी नींद दो ताकतों के संतुलन पर चलती है, नींद का बढ़ता दबाव प्रोसेस एस और हमारी 24 घंटे की जैविक घड़ी प्रोसेस सी। हमारी रोजमर्रा की आदतें इस संतुलन को बना या बिगाड़ सकती हैं।
जैसे
रोजाना लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करना इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि वीकेंड पर बहुत देर तक सोना या देर रात तक जागना इस घड़ी को गड़बड़ा देता है, जिसे सोशल जेटलैग कहते हैं। तो नियमितता बहुत जरूरी है।
तीसरा संदेश जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है रोशनी की भूमिका। रोशनी हमारी जैविक घड़ी की भाषा है।
हाँ,
तो घर की लाइट्स का मैनेजमेंट और स्क्रीन टाइम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
चौथा संदेश जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये कि नींद की कमी सिर्फ आपको थकावा महसूस नहीं कराती, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर संकट है। मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यहां तक कि डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी नींद की कमी से बढ़ जाता है। भारत में जहां परीक्षाओं का इतना दबाव है या शिफ्ट में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए।
और पांचवा संदेश ये कि हमारी नींद की जरूरतें और पैटर्न उम्र भर बदलते रहते हैं। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा नींद चाहिए, किशोरों की जैविक घड़ी अलग तरह से चलती है, वयस्कों की जरूरतें अलग हैं और बुजुर्गों की नींद अक्सर हल्की और टुकड़ों में हो जाती है।
हाँ, और इन बदलावों को समझना जरूरी है। जैसे किशोरों का देर से सोना उनकी आलस नहीं, उनकी बायोलॉजी है। इस समझ के साथ शायद हम उनके प्रति ज्यादा सहानुभूति रख सकते हैं और सिस्टम में बदलाव लाने की सोच सकते हैं।
इन किताबों में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, कुछ यादगार विचार।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक विचार ये है जिसका सार है कि अगर नींद का कोई बहुत ही जरूरी मौलिक काम नहीं होता तो ये विकास के क्रम की सबसे बड़ी गलती होती।
ये तो गहरी बात है।
हाँ सोचिए, सोते हुए हम कितने लाचार और असुरक्षित होते हैं, शिकारियों का खतरा, माहौल का खतरा, फिर भी लगभग हर जीव सोता है। इसका मतलब है कि नींद जो फायदा पहुंचाती है वो इन खतरों से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। जरूर इसका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा।
सही कहा। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि हमारा शरीर सिर्फ 24 घंटे की दुनिया पर प्रतिक्रिया ही नहीं करता, वो आने वाले दिन का पूर्वानुमान लगाता है अपनी लाखों साल पुरानी आंतरिक घड़ी की मदद से।
हाँ, ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना एडवांस्ड है। ये पैसिव नहीं है, ये सुबह होने का इंतजार नहीं करता कि रोशनी होगी तब जागेंगे। नहीं, ये घड़ी पहले से ही शरीर को सुबह के लिए तैयार करना शुरू कर देती है, हार्मोन बदलकर, तापमान बढ़ाकर।
और एक चेतावनी भी है इन किताबों में जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगती है।
कौन सी?
हम सब मिलकर नींद की कमी का एक वैश्विक अनियंत्रित प्रयोग कर रहे हैं, और इसके नतीजे क्या होंगे यह हमें अभी पूरी तरह से समझना बाकी है।
बिल्कुल, ये एक तरह से अलार्म बजा रहा है। हम अपनी आधुनिक जीवन शैली के चलते अनजाने में इस बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए हैं, और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है।
और वो किशोरों वाली बात फिर से दोहराने लायक है। किसी किशोर से सुबह 7 बजे जागकर पूरी तरह सतर्क और सीखने के लिए तैयार होने की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे किसी वयस्क से सुबह 4 बजे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उम्मीद करना। ये आलस का मामला नहीं, ये जीव विज्ञान का मामला है।
हाँ, ये स्कूलों के समय, परीक्षाओं के शेड्यूल, इन सब पर सवाल उठाता है। क्या हम अपनी सामाजिक संरचनाओं को अपनी बायोलॉजी के हिसाब से ढाल सकते हैं?
तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स।
हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो हर कोई कर सकता है। सबसे पहले तो रोशनी का प्रबंधन। सुबह उठने के बाद जितना जल्दी हो सके 15-30 मिनट के लिए प्राकृतिक रोशनी में जाएं। बालकनी में खड़े हो जाएं, खिड़की के पास बैठ जाएं या बाहर टहल लें। ये आपकी जैविक घड़ी को वेकअप सिग्नल देगा।
ओके।
और शाम को
सोने से 2-3 घंटे पहले घर की लाइटें डिम कर दें। तेज सफेद या नीली लाइट की जगह पीली या नारंगी वार्म लाइट का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स, फोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी को बंद कर दें।
1 घंटा पहले? ये थोड़ा मुश्किल है आजकल।
मुश्किल है लेकिन जरूरी है। अगर स्क्रीन देखना ही पड़े तो नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें और ब्राइटनेस कम रखें।
ठीक है, और दूसरा पॉइंट?
नियमितता। कोशिश करें कि रोज लगभग एक ही समय पर सोएं और जागें, यहां तक कि वीकेंड पर भी। थोड़ा बहुत फर्क चलेगा, लेकिन अगर आप वीकेंड पर 2-3 घंटे ज्यादा सोते हैं तो आपकी घड़ी सोमवार सुबह फिर से गड़बड़ा जाएगी। इसे सोशल जेट लैग कहते हैं। अच्छा, सोशल जेट लैग, ये नया शब्द सीखा। और खाने पीने का कुछ असर?
हाँ, कैफीन और अल्कोहल। दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन, चाय, कॉफी, कोला, एनर्जी ड्रिंक से बचें, क्योंकि इसका असर कई घंटों तक रह सकता है। और अल्कोहल भले आपको नींद आने में मदद करे, लेकिन ये नींद की क्वालिटी को बहुत खराब करता है, खासकर REM नींद को।
और सोने का कमरा कैसा होना चाहिए?
सोने का माहौल ठंडा, अंधेरा और शांत होना चाहिए। तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस आदर्श माना जाता है। अंधेरे के लिए ब्लैकआउट पर्दे या आई मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और शोर कम करने के लिए एयरप्लग्स या व्हाइट नॉइज मशीन।
ठंडा, अंधेरा और शांत, याद रहेगा। एक और चीज, दोपहर की झपकी, पावर नैप, वो फायदेमंद है?
हाँ, दोपहर की झपकी फायदेमंद हो सकती है। लंच के बाद थोड़ी सुस्ती आना एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है, पोस्ट लंच डिप। अगर संभव हो तो 20-30 मिनट की एक छोटी जबकि आपको तरोताजा कर सकती है और आपकी परफॉर्मेंस सुधार सकती है।
बस छोटी होनी चाहिए।
हाँ, 20-30 मिनट से ज्यादा नहीं, और दोपहर में 3 बजे के बाद नहीं लेनी चाहिए, वरना रात की नींद में दिक्कत आ सकती है।
तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपनी नींद बेहतर कर सकते हैं।
जी बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा असरदार वो ग्लिम्फैटिक सिस्टम वाली बात थी, कि नींद के दौरान दिमाग अपनी सफाई करता है, जहरीले पदार्थ बाहर निकालता है। ये जानने के बाद नींद को सिर्फ आराम समझना मुश्किल है, ये तो दिमाग के स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। इसने मुझे अपनी नींद को और ज्यादा प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है।
हाँ, मेरे लिए भी वो पॉइंट बहुत अहम था, और साथ ही रोशनी का हमारी जैविक घड़ी पर इतना गहरा और सीधा असर होता है ये जानना भी आंखें खोलने वाला था। कैसे सुबह की धूप जरूरी है और रात की स्क्रीन नुकसान दे, ये समझना कि हम अपनी आदतों से, खासकर रोशनी के इस्तेमाल से, अपनी नींद को कितना प्रभावित कर सकते हैं, ये मेरे लिए बड़ा टेक अवे था। और ये भी कि ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सोचने की जरूरत है, जैसे स्कूल का समय या शिफ्ट वर्क का मैनेजमेंट।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।